ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुरुम्। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी सर्वस्थानंद जी महाराज, मेरे सम्मुख उपस्थित श्रद्धेय सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारीगण, श्री रामकृष्ण भक्त वृंद, माताओं और सज्जनों, जैसा अभी कहा गया है, आज यहां हमारे चर्चा का विषय है सत्संग। सत्संग शब्द हम सभी जानते हैं। आपको किसी ने पूछा होगा कल सुबह आपका क्या कार्यक्रम है, आप लोगों ने यही कहा होगा कि हम एक सत्संग में जाना है। यह भी एक सत्संग है, ठीक, परंतु सत्संग या शब्द प्रयोग किस अर्थ में होता है? मास्टर महाशय को ठाकुर ने कहा था, मास्टर महाशय ने जब ठाकुर से पूछा था कि महाराज ईश्वर से प्रेम कैसा होगा, जीवन में व्याकुलता कैसी आएगी, तो ठाकुर ने उन्हें तीन चार बातें कही थी। इसके लिए नित्यानित्य विवेक करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, व्याकुल होकर ईश्वर को प्रार्थना करनी पड़ेगी और बीच बीच में एकांतवास करना पड़ेगा, एकांतवास में रहना पड़ेगा, सब कुछ भूल के ईश्वर की चिंता करनी पड़ेगी। इससे धीरे धीरे ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, मास्टर महाशय को कहा था। अब देखिए ठाकुर ने जो बातें कही, इसमें पहली बात कौन सी कही? नित्यानित्य विवेक। हम सबको पहले उसी की आवश्यकता है और उस पहली बात में बैठने के लिए ही हमें जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। एक जन्म में हमारे जीवन में नित्यानित्य विवेक नहीं आता। विवेक का इतना महत्व है क्योंकि जब तक जीवन में विवेक नहीं आएगा, ये अध्यात्म हमारे जीवन में नहीं आएगा, आध्यात्मिक जीवन हमारे लिए शुरू ही नहीं होगा। महाराज ने कहा ना, अभी छोटी सी कहानी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब विवेक से सत्संग ग्रहण किया जाता है तो बात दूसरी होती है, और वो ग्रहण करना, आत्मसात करना, ये कैसे होता है? वो विवेक से होता है। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है, नारद जी सनत कुमार जी से पूछते हैं कि भगवान मेरे जीवन में शांति नहीं है, मुझे दुख होता है, शोक होता है, और मैंने सुना है कि जो आत्मवित होता है उसे शोक नहीं होता, तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मा को जानते हैं उनके जीवन में शोक नहीं रहता, लेकिन मुझे तो शोक होता है, दुख होता है, क्यों? तो सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, पहले बताओ तुम क्या क्या जानते हो? नारद जी ने बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बता दी, सब जानता हूं, सब चारों वेद जानता हूं, वेदांग जानता हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम, सब 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 जानता हूं। ये सब जानने के बावजूद भी तथापि शोचामि भगवान, मैं ये सब जानता हूं लेकिन प्रभु मैं फिर भी शोक करता हूं, मुझे शोक होता है, दुख होता है, कष्ट होता है। क्यों होता है? फिर हम देखते हैं उसमें सनत कुमार जी उनको ज्ञान देते हैं, पराविद्या अपराविद्या, ये जो सब चार वेद है, वेदांग है, सब ज्ञान है, संसार में हम जो कुछ भी जानते हैं समझते हैं जिसको लेकर हम रहते हैं वो सब अपराविद्या है। और अपराविद्या क्या करती है? अपरा विद्या हमें बांधती ही है। ये जगत के हमारी जो भी उपलब्धियां है, जगत में हम जो कुछ मिलाते हैं, वो सब हमारे लिए दुख का कारण बनता है, सब दुख का कारण बनता है। हम कुछ भी मिलाए, पहले हमें इच्छा होती है ये मिलाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये मिल जाएगा तो अच्छा होगा, मुझे सुख मिलेगा, मैं ऊपर चढ़ूंगा। अगर वो लौकिक है, अगर वो अपरा विद्या के कैटेगरी में पड़ता है, तो वो हमें बांधेगा, दुख देगा। ये हमारे अंदर हम नहीं जानते। फिर कहते हैं कि जो पराविद्या है वही वास्तविक ग्रहणीय है, उसी का स्वीकार होना चाहिए जीवन में। तो पराविद्या क्या है? ये जो चार वेद बताए उनको भी अपराविद्या बता दिया, सब वेदांग ये भी अपराविद्या बता दिया। फिर पराविद्या की व्याख्या क्या किया है? पराविद्या वो है यया तद वस्तु उपलब्धते, यया तद वस्तु अधिगम्यते, जिससे वो वस्तु प्राप्ति होती है, असली चीज जिससे मिलती है वह पराविद्या है। अब देखिए, पराविद्या माने कोई उपनिषद के श्लोक है? अगर हमने सब उपनिषद कंठस्थ कर लिए, पूरी जो अक्षर राशि है, शब्द राशि है, वो शब्द राशि हमने सब कंठस्थ कर लिए, भगवत गीता मैंने पूरी कंठस्थ कर ली शब्द राशि, तो मैं शोक के पर चला जाऊंगा? नारद जी कहते हैं तरति शोकम आत्मवित, केवल आत्मवित ही शोक को तरता है, शोक के परे चले जाता है। तो इसका मतलब क्या है? बोलते मैं ये शब्द ज्ञान तो मैं जानता हूं, ये चारों वेद मैं जानता हूं, ये सब जानता हूं, लेकिन मैं शब्द ज्ञान जानता हूं, मुझे अक्षर ज्ञान है, लेकिन वो विद्या मेरे पास नहीं है, वो ज्ञान नहीं मेरे पास, जिससे तरति शोकम आत्मवित, जिससे ययातद वस्तु अधिगम्यते, जिससे वो उसकी प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति माने किसकी? उस ज्ञान की, जो शोक के परे ले जाता है। माने वो शब्द राशि नहीं है, अक्षर राशि नहीं है, वो कुछ और है, ये नारद जी कहना चाहते हैं। और वो क्या है? वास्तविक जिसके प्राप्त होने से मनुष्य सबके परे चला जाता है, मुक्त हो जाता है। ये जो सब विद्या है, ये सब शास्त्र जो हमारे बंधन का कारण होता है, बंधन माने ही दुख, बंधन माने ही शोक, लेकिन इन शब्दों से दूसरी कोई एक वस्तु लक्षित होती है, वह ज्ञान, वह अनुभूति, वह मेरे पास नहीं है, यह नारद जी कहते हैं। और जो वास्तविक ज्ञानी जिन्हें कहते हैं, उनके पास वह वस्तु होती है, इसलिए उनके जीवन में शोक नहीं होता। देखिए, नारद जी इतने बड़े, इतना सब जानने वाले, फिर भी उनके जीवन में उन्हें सनत कुमार जी को पूछना पड़ा, क्योंकि उस समय सनत कुमार एक ऐसे थे जिनके जीवन में वह आत्मज्ञान प्रकट हुआ था और सब शोक के परे वो हो गए थे। कैसे आता है? हम लोग तो सोचते हैं कि थोड़ा शास्त्र चर्चा करनी पड़ेगी, शास्त्र पाठ करना पड़ेगा, अभ्यास, शास्त्र अध्ययन, इसके बगैर हमारा होगा नहीं। हां, करना है, नहीं करना ऐसा बात नहीं, लेकिन उसके पीछे क्या है उसे हमें समझना है। एक कथामृत में एक कहानी आती है, एक राजा था, वो बड़ा भक्त था, भागवत सुनने का आदि था, और एक पंडित जी उसे भागवत पढ़ाने सुनाने जाते थे। पंडित जी भागवत सुनाने के बाद में पाठ होता था, पाठ के बाद में, समझाने के बाद में राजा को पूछते थे, महाराज समझे, समझ गया? तो राजा रोज पंडित जी को बोलता था, पंडित जी पहले आप समझ लीजिए। पंडित जी घर में जाते, मुझे, मैं तो इतना बढ़िया सब समझाया और राजा मुझे ही कहता है कि पहले आप समझ लीजिए। रोज, महाराज समझे, पंडित जी पहले आप समझ लीजिए। महीने हो गए, महीने चले गए, वर्ष बीत गया, पंडित जी रोज सोच रहे, रोज भागवत पढ़ता हूं और रोज राजा वही कहता है कुछ तो है, लेकिन क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो रोज 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 सुनने के कारण वो बात उसके अंदर तक घुस गई थी और वो रोज 24 घंटे उसके मन में वही चल रहा है कि मुझे क्यों नहीं समझ रहा, मैं क्या समझना है मुझे, इतने बढ़िया समझा रहा हूं राजा को और राजा मुझे कहता है पंडित जी पहले आप समझ लो क्या है। एक दिन ऐसे बैठे हैं, अचानक उनके अंदर एक फ्लैश ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान का एक प्रकाश है, अरे मैं इतने सालों से भागवत पढ़ा के राजा को बता रहा हूं कि राजा ये सब मिथ्या है, अनित्य है, ये जगत ये इंद्रियों से ग्रहण किया जाने वाला जगत है, ये मिथ्या है, अनित्य है, इसके परे के पीछे के लिए मुझे जीना है, शरीर का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, मैं कल तक जीऊंगा कि नहीं पता नहीं मुझे, आज रात को ही मैं जा सकता हूं, आप सब लोग जानते हैं 28 तारीख को मैं यहां स्वामी नीलकंठानंद जी से बात करके गया, मुझे पूछा तुम कब जाओगे, मैंने कहा मैं कल सुबह जाऊंगा, मैंने कहा तुम कब जाओगे, बोले मैं काली पूजा देख के 29 तारीख को जाऊंगा, 29 तारीख की पूजा देखूंगा और 30 तारीख को जाऊंगा। 30 तारीख को मैं आरती करके कमरे में गया, मुझे फोन आया, बोले कुछ न्यूज समझी, बोले क्या न्यूज, विलास महाराज की, बोले क्या विलास महाराज, हाँ कल ही तो मिल के आया दिल्ली में उन्हें, नहीं वो गए है, कैसे गए, कल ही मैं मिला उन्हें, अरे हाँ बाबा आज गए, आज कैसे गए, अभी गए ट्रेन में चले गए। देखिए मैंने सोचा भी नहीं था कि विलास महाराज की मेरी आखिरी मुलाकात थी यहां, 28 तारीख को, 29 तारीख को काली पूजा देखकर वो मैं 29 की सुबह मैं 28 रात को हम लोगों ने बातें की, 29 को मॉर्निंग में मैं चला गया ग्वालियर और 30 को मुझे ये न्यूज मिली। देखिए इतना अनसर्टन हमारा जीवन है, उनकी उम्र क्या थी, 60 भी नहीं हुआ था पूरा, तो ये पंडित जी के अंदर ये ज्ञान आ गया, अरे मैं इतना भागवत पढ़ रहा हूं, राजा को समझा रहा हूं और फिर भी मुझे अभी तक वास्तविक ईश्वर ही पद चाहिए, बाकी सब ये नहीं, राजा को मैं भागवत सुनाता हूं इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है मुझे मिला एक अवसर मिला है, ये क्या बड़ी, बहुत बड़ी बात है, भागवत का जो मर्म है वो क्या मैंने ग्रहण किया, नहीं किया, बस आंख खुल गई, एक कागज पर लिख दिया उसने, राजा मैं समझ गया, और एक कागज दे दिया किसी को, ये कागज दे दो राजा को पहुंचा दो, और उसी समय पंडित छोड़ के चले गए दूर कहीं एकांतवास में, कहीं चले गए जंगल में। ये है सत्संग का महत्व, जब सत्संग करते हैं, सत्संग केवल इस प्रकार होता है, चर्चा से होता है, एक दूसरे में हम ईश्वर की कथा प्रसंग करते वो भी सत्संग है, सामूहिक सत्संग वो भी है, शास्त्राध्ययन वो भी सत्संग है, सब सत्संग है, लेकिन वो सत्संग की परिणति किसमें होनी है, तब वो सही सही सत्संग होगा जब वो सत्संग हमें उसको धारण करने की हमारी शक्ति बढ़ेगी, जब हम उसे धारण करेंगे, ऐसा नहीं कि सत्संग हो गया हॉल में छोड़ दिया बाहर निकल गए, भागवत के पंडाल में भागवत रह गया हम घर आ गए, हमारा ऐसा ही होता है, हम लोगों का ऐसा ही होता है, अभी तक हम उसको ठीक से पकड़ के अंदर करने की अभी हमें पूरी शक्ति प्राप्त नहीं हुई, इसलिए बार 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 हमें करना है, सुनना है, बोलना है, ऐसा करते करते ही आ जाएगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पेट का जो हाजमा है, हमारी जो डाइजेस्ट करने की शक्ति है, पाचन शक्ति है, हमारी पाचन शक्ति ठीक नहीं हुई, हम लोग खाते तो बहुत है, बादाम का हलवा खाते हैं, दूध पीते हैं, घी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी शरीर में कुछ लगता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसे जैसा शरीर में एसिमिलेट कर लेना चाहिए, वो सब जो पौष्टिक तत्व है वो शरीर के अंदर खून के साथ मिलकर एक हो जाना चाहिए, वैसे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे वो, क्योंकि हमने उस प्रकार का हमारा ये बनाया नहीं, सिस्टम बनाया नहीं, हमने सिस्टम को ना दूध के साथ आधा दूध आधा पानी ऐसे दूध पीने की आदत लगा ली है। इसलिए शास्त्र अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रकार की साधना बताता है। कर्म वेदा वेदों में कर्म की साधना है, भक्ति उपासना की साधना है और तत्व की साधना है, तत्व विवेचना है। तत्व विवेचना है, उपासना विवेचना है और कर्म विवेचना है। कर्म किसके लिए है? जिनका अधिकार अभी अच्छा नहीं हुआ, जिनकी हजम करने की शक्ति अच्छी नहीं हुई, उनके लिए कर्म में से होकर जाना पड़ेगा। जब कर्म में से होकर जाएंगे उसके बाद भक्ति उपासना के लिए बल आएगा, फिर भक्ति उपासना लेके रहेंगे। और जब भक्ति उपासना से भी हम सबल हो जाएंगे तब हम तत्व विचार में जाएंगे। क्योंकि तत्व विचार में जब तक नहीं जाएंगे तब तक सही सही अध्यात्म में हम नहीं बैठ सकेंगे। तत्व विचार बहुत आवश्यक है। और तत्व विचार कैसे आता है? तत्व विचार तक हम कैसे पहुंचते हैं? तत्व विचार तक हम पहुंचने का मार्ग एक ही है, और तत्व विचार तक पहुंचने का मार्ग है जब तक हमारे जीवन में विवेक नहीं आएगा। इसलिए ठाकुर ने सबसे पहली बात कही है नित्यानित्य वस्तु विवेक। अभी जैसे कहा ये विवेक क्या करता है? सत्संग से विवेक जगता है धीरे धीरे, और ये विवेक आपको निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम सत्संगे सत्संग निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। माने हमें निश्चल एक तत्व तक पहुंचाता है। हमने एक दो दिन थोड़ी सी ठाकुर स्वामी मां स्वामी जी की बातें की थी कल। ये तत्व तक पहुंचने के लिए ही ये सब उपासना है। ये जो अवतारी पुरुष आते हैं, ये जो सगुण उपासना है, राम है कृष्ण है शिव है दुर्गा है काली है राम कृष्ण है मां शारदा है, ये सब रूप जो हमारे सामने आते हैं जो हमें अच्छा लगता है उसको पकड़कर हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। उनको पकड़कर हमें कहां जाना है? उनका जो स्वरूप है जिस तत्व में वे बैठे हैं वहां तक हमें जाना है। मां के बारे में कल हमने थोड़ा कहा कि मां वो एकत्व के ज्ञान में ऐसी बैठी है करके मां के जीवन में शांति है, मां को अशांति नाम की चीज मालूम नहीं। जरा समय मिला कि मां ध्यान में डूब गई। कितने लोगों के अपने अपने जो रेमिनिसेंसेस में हम पढ़ते हैं, कुछ कुछ बातें तो नोट नहीं हुई, लेकिन जो ऐसे पुराने लोगों से पुराने साधुओं ने कुछ बातें बताई है और वो भक्तों से भक्तों के माध्यम से साधुओं के माध्यम से जो हम तक पहुंची है उसमें दिखता है कि मां बाकी समय समाधि में ही रहती थी। दिखने के लिए मां सब कर रही है, भक्तों की सेवा कर रही है, क्या नहीं कर रही मां, सब कुछ कर रही है। एक गृहिणी जितना करती उससे भी ज्यादा मां बिना संसार के कर रही थी, लेकिन फिर भी मां एक ऐसी जगह बैठी थी जो नारद जी कहते हैं सनत कुमार को कि तरत शोकम आत्मवित्त। मां के जीवन में हम वो देखते हैं, वो शास्त्र सफल हुआ दिखते हैं। ये महापुरुष लोग आते हैं, स्वामी जी ने कहा ठाकुर ने सब शास्त्रों को प्रतिष्ठित किया, सब शास्त्र अपने जीवन में उतार के दिखाए। ठाकुर मां स्वामी जी तीनों ने यही किया है। मां उस एकत्व में उस निश्चल तत्व उस निश्चल तत्व में मां बैठी है। इसलिए मां एक दो बार अपने शिष्य को या किसी राधु की मां को वगैरह मां ने कहा था कि देखो ज्यादा परेशान मत करो, मैं अब भी एक मिनट में शरीर छोड़ के चली जा सकती हूं, सब हाथ में है, समझ गया है, सब ज्ञान है, फिर भी इस प्रकार क्यों जी रहे हैं? हम लोगों के लिए, अज्ञानी लोगों को कुछ देने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। तो हम मां की उपासना करते हैं, हम शास्त्रों की उपासना करते हैं, इससे हमें वास्तविक क्या लेना है? वो जहां बैठे हैं यया तद वस्तु अधिगम्यते, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। सत्संग हमें उस विवेक में बिठाने की कोशिश करता है, उस विवेक में हमें बैठने की आदत लगानी है, या उस विवेक में हम पहुंच जाए, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब उस विवेक में पहुंचने का हमारा लक्ष्य होगा सत्संग से, फिर उस दृष्टि से हम जो कुछ भी करते हैं सत्संग के लिए, अपना स्वयं का शास्त्र पाठ करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कभी किसी से ईश्वर की चर्चा करते हैं, इस प्रकार के पाठ चक्र होते हैं, इस प्रकार के सत्संग आयोजन होते हैं, ये सब हमें उस विवेक में स्थिर करेंगे, वह विवेक हमारे जीवन में और बढ़ाने के लिए निमित्त बनेंगे। ये सभी महापुरुषों ने अपने जीवन में वो बताया है विवेक। ठाकुर ने क्या दिखाया है, कामारपुकुर जैसे छोटे से गांव में है, किसने पढ़ाया उनको, वो अंदर के पवित्र हृदय ने, जहां विवेक पूरी मात्रा में विद्यमान है। 16-17 साल का बालक ये कहता है कि मुझे वह विद्या नहीं चाहिए जिससे केला चावल बांधकर घर लाने की बुद्धि होती है, वो केला चावल बांधकर घर लौटूंगा ऐसी विद्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे वह विद्या चाहिए जिसे जीवन धन्य हो जाता है। 16-17 साल में हम ठाकुर की इस प्रकार का मन देखते हैं, फुल ऑफ विवेक। ये क्या विवेक से ही तो सोचा, हम लोग तो 16-17 में पागल ही थे। स्वामी जी 20 साल के थे, घर में कैसी परिस्थिति थी, मां भाई बहनों को ठीक खाने को नहीं मिलता था, स्वामी जी को 30 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही थी, परेशान कैसे मां को और भाई बहनों को खिलाऊं इसकी चिंता, और लॉ की पढ़ाई करनी है, मां डांट रही है, बस इधर उधर घूमते हो, भगवान 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 करते हो, क्या किया तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे भगवान से तो ऐसा सब कर दिया। और स्वामी जी पढ़ रहे थे और स्वामी जी का विवेक अंदर से करने लगा, मां सब ये बोलती है ठीक है, लेकिन श्री राम कृष्ण ज्यादा दिन जिएंगे नहीं, श्री राम कृष्ण की ऐसी अवस्था है, कैंसर इतना बढ़ गया है कि कब कभी भी जा सकते हैं, और वे चले गए तो मेरा क्या होगा, मुझे जो सत्य की प्राप्ति करनी है वो कैसी होगी, और मैं तो यहां पढ़ाई कर रहा हूं LLB करने के लिए, लॉ करने के लिए। शंकराचार्य तो कहते हैं मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रेया, मुझे तीनों मिला है, मनुष्य जन्म है, मुमुक्षा भी है, सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूं, श्री राम कृष्ण जैसे महापुरुष मेरे जीवन में है, और मैं लॉ पढ़ रहा हूं। देखिए ये विवेक है, ये विवेक है। और स्वामी जी क्या करते, वैसे ही टेबल छोड़ के बिना चप्पल कुछ पहने दौड़ते हुए काशीपुर पहुंच जाते हैं पागल जैसे। ये विवेक है, हम ना इस प्रकार के इसकी हमेशा चिंता करनी पड़ेगी, तब हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा कुछ आएगा। हम लोगों के दूसरे संस्कार इतने ज्यादा है ना जगत के, और क्यों है वो, क्योंकि हमने ये पंचेंद्रियों का जगत, जिसको विषय सेवन कहते हैं, विषय जगत कहते हैं जिसको, ये विषय ना इंद्रियों का विषय है सब कुछ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में हम रहते हैं। ये विषय सेवन से हमारा जो हाजमा है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो बिगड़ गई है, विषय सेवन से बिगड़ी है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सत्संग से हमारे विवेक को जगाने के लिए केवल सत्संग होता है, और विवेक से हमारी ये पाचन शक्ति, ये ग्रहण करने की क्षमता, ये बढ़ती है, ये बढ़ना चाहिए। क्या ये बढ़ रही है मेरी, कि मैं वैसा ही हूं, 40 साल से सत्संग ही कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कब तक पढ़ते रहूंगा, कब तक ये करूंगा, कुछ तो जीवन में आए मेरे, ये विवेक बताएगा। और इसके लिए श्री रामकृष्ण ने क्या कहा है, श्री रामकृष्ण ने कहा है इसके लिए हमें संसार में, तो हम संसार से कहां छूटेंगे, हम सब संसार में हैं। अभी महाराज ने बताया हमारा आश्रम तो और बड़ा संसार है, ये संसार में हमको कैसे रहना है, हल्दी माख के ठाकुर ने कहा है विवेक रूपी हल्दी शरीर में लगाकर हमें इस संसार रूपी सागर में तैरना है, नहीं तो मगरमच्छ खा लेगा। संसार में तो रहना है, पानी में अगर जहां मगरमच्छ है वहां अगर हम चले जाते हैं तो कभी भी वो मगरमच्छ आके पकड़ के हमें डुबाकर खा लेगा। संसार भी हमें ऐसा ही डुबाता है। डुबाता है माने क्या? इन्हीं विषयों के पीछे दौड़ाता है, आज ये कल वो कल परसों वो, और ये ऐसा करते करते हमारे कितने जन्म गए होंगे, कितने जन्म हमने यही किया है, कर रहे भाग्य से अब तक अब यहां पहुंचे हैं। कम से कम ये बातें थोड़ी अच्छी लगने लगी है। ठाकुर का, मां का, स्वामी जी का जीवन हम थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसे थोड़ा प्यार कर सकते हैं, यहां तक आए हैं, ये सत्संग का परिणाम है। और हमें ये देखना है कि सत्संग से जो धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर उठते हैं, तो हमारी देखो बहुत बार क्या होता है ना, हम व्यक्तियों में इंटरेस्टेड रहते हैं, किसी व्यक्ति को लेकर चर्चा करते हैं, फिर व्यक्ति को व्यक्ति की चर्चा में हमें आनंद नहीं आता। अरे ठीक, सब ऐसा होता है, सभी ऐसा है, सभी का ऐसा होता है, लेकिन हम फिर किस इश्यूज को लेकर बात करते हैं, इश्यूज को लेकर हम चर्चा करते हैं, परिस्थिति को लेकर बात करते हैं। व्यक्ति को लेकर बात करने से परिस्थिति को लेकर बात करना थोड़ा हायर समझ सकते हैं, हायर है थोड़ा। ठाकुर को वो भी मंजूर नहीं है, ठाकुर को वो भी मंजूर नहीं है। मास्टर महाशय और स्वामी जी ठाकुर के कमरे में, आजकल की परिस्थिति देखो कैसे हो गया, वो बोलते ना मास्टर महाशय, स्वामी जी बोलते देखो मैं तो सुनता हूं आजकल के लड़के ऐसा करते हैं वगैरह बोल रहे, मास्टर ने बोला हमारे समय में तो ऐसा नहीं था वगैरह वगैरह, फटाक से ठाकुर गंभीर हो जाते हैं और मास्टर महाशय को डांट कर कहते तुम इससे बड़े हो, तुम्हें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, बात करनी है तो ईश्वर की बात करो। देखो हमको कभी कभी लगता है कि परिस्थिति की बात हम करते हैं, हम तो किसी इंडिविजुअल को तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन हम परिस्थिति को क्रिटिसाइज कर रहे, परिस्थिति की हमें चिंता है, परिस्थिति परिस्थिति कुछ नहीं सब बेकार है, लेकिन हम वो परिस्थिति की वो भी छोड़ देना है, उससे भी हमें देखना है ये परिस्थिति ऐसी क्यों होती है, व्यक्ति ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या है, इस सब के पीछे क्या है, इसका निर्णय होता है तत्व विचार से। हमारी उपनिषद, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा गया है, उपनिषदों में तत्व विचार है। और जो कर्म यज्ञ आदि जो कर्म करते हैं वो है शुरुआत, उसके बाद में विद्याएं आती है जो और सूक्ष्म इसमें आपको ले जाती है, एक सूक्ष्म स्तर में ले जाती है, स्थूल स्तर से आपको उठा के सूक्ष्म स्तर में ले जाती है। भक्ति उपासना विज्ञान, भक्ति विज्ञान उपासना विज्ञान, और उससे फिर तत्व विज्ञान, और ये तीनों में हमें ले जाने का काम कौन करता है? वो विवेक करता है। इसलिए सत्संग का मुख्य उद्देश्य है विवेक, और विवेक बढ़ाने के लिए ठाकुर ने कहा दूसरी बात साधु संघ। साधु संघ का तात्पर्य क्या है? साधु संघ का तात्पर्य यह है कि जहां पर कुछ बातें जीवन में आई है, जैसे हम देखते हैं नारद जी सनत कुमार के पास जा रहे हैं, नारद जी वास्तविक बहुत बड़े अधिकारी है, लेकिन नारद जी ये समझते हैं कि मुझसे भी बड़े अधिकारी सनत कुमार है, क्योंकि सनत कुमार जी ने ये जो वास्तविक जिसको वेदांत कहते हैं, जिस वास्तविक जिसको तत्व विचार कहते हैं, उसको आत्मसात कर लिया है, और जब तक वो आत्मसात नहीं होगा तब तक इसका मूल्य करीब करीब शून्य, थोड़ा सा है दिखाने के लिए दिखने के लिए, लेकिन वास्तविक शून्य। और सबसे बड़ी बात ये विचार है, ये विचार इस तक हम कैसे पहुंचेंगे, इस तक कैसे पहुंचेंगे, उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बातें जीवन में स्वीकारनी पड़ेगी, सत्य मानकर स्वीकार। हम जानते तो है, जानते तो बहुत है, बहुत जानते हैं, लेकिन क्या उसको स्वीकार करते हैं हम? यहां सब लोग हाथ ऊपर करेंगे अगर कहते कि यहां हम ऐसे कोई है कि जो कभी मरेगा नहीं, सब लोग बोलेंगे हां मरेंगे, कोई नहीं, कोई मेरे साथ ये नहीं करेगा, डिफर नहीं होगा इस विचार में। सब लोग बोलेंगे हाँ मरेंगे, आज कल परसों, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, सब मरेंगे, सब यहां बोलेंगे हम अब स्वीकारते। लेकिन क्या ये परिस्थिति हमने स्वीकारी है अंदर से, मैं मरूंगा कल मैं नहीं रहूंगा, इसको समझ के क्या मैं आज जी रहा हूं? नहीं। अगर हम मैं ऑनेस्टली अपने आप से पूछता हूं तो नहीं जी रहा हूं। मैं मानता हूं कि कल सुबह फिर से उठूंगा, नाश्ता करूंगा। अरे किसने कहा है? हम ये सत्य को स्वीकारते नहीं है कि मैं कभी भी मर जाऊंगा। तो जीवन में ना, आध्यात्मिक जीवन में सत्संग से उस निश्चयात्मक बुद्धि तक हमें आना पड़ेगा कि ये सत्य है। और वो सत्य ठीक है एकदम पूरा 100% एक दिन में नहीं आएगा हमारे जीवन में, लेकिन हमारी दिशा वो होनी चाहिए, हमें सत्य को स्वीकारना होगा। देखो वो बहू ने एक दिन भागवत सुनी और उसने गाय में सभी देवताओं का वास है माना, और अपने घर का सब वो जो भी किया रखा था वो सब खाने दिया गाय को। क्यों? क्योंकि उसने आत्मसात कर लिया था, उसने वहां भागवत में जो सुना वो फट से आत्मसात कर लिया। और सास बरसों से भागवत कर रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं है। हमें शास्त्र को बार 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 कितनी बार पढ़ना है। इसलिए तो ठाकुर ने कहा है कि अरे शास्त्र क्या है, बस एक चीज सिखाने के लिए तो सब शास्त्र है। गीता का सार क्या है? तागीता गीता 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 गी त्यागी, हे जीव ईश्वर के लिए सर्वस्व का त्याग कर। देखिए, और हम कभी कभी अपने कोई कभी कभी अच्छा लग रहा है, हमको तो वो भी अध्याय कंठस्थ है, वो भी अध्याय कंठस्थ है, उसी में आनंद आता है। अरे अध्याय कंठस्थ करके क्या करोगे? वो अध्याय का एक श्लोक में जो एक भाव कहा गया है, क्या वो भाव को लेकर मैं जी रहा हूं? जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा इस प्रकार से, जब तक मेरे विचार में विचार नहीं होगा, तब तक सत्संग मुझे लाभ नहीं पहुंचाएगा। मैं सत्संग करते रहूंगा, कहीं तो भी मुझे समाधान अपने आप को दिलाता रहूंगा, लेकिन फिर गेट के बाहर जाने के बाद चिंता चालू हो जाएगी। इसलिए श्री राम कृष्ण ने कुछ कुछ एक अच्छी हिंट समय दी है, बहुत अच्छी बातें बताई है, तब कहीं हम ये पराविद्या, और पराविद्या माने उपनिषद नहीं, पराविद्या माने गीता नहीं, पराविद्या माने गीता से, उपनिषद से, पुराणों से, महापुरुषों के शब्दों से जो बात मिलती है, जो अनुभूति की बात होती है, वो पराविद्या है। वो हमारे अंदर आ रही, इसकी तरफ ध्यान रखना है हमें। शब्द राशि पराविद्या नहीं है, इसलिए हमें शब्द सुनकर इन शब्दों के पीछे जो है वहां तक पहुंचना है इस सत्संग से। ठाकुर ने यहां तक पहुंचने के लिए ही ये बातें कही है। क्या कहा है? उनसे प्यार करने पर विवेक वैराग्य अपने आप ही आ जाते हैं। देखो हम ना कहते हैं ठाकुर मां स्वामी जी से हमें प्यार है, अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारा सही प्यार नहीं, हमारा सही प्यार जगत से है, जगत की वस्तुओं से है, जगत के व्यक्तियों से है, वस्तुओं से और व्यक्तियों से, बस दो ही तो चीजें हैं, और क्या है? व्यक्ति है और वस्तु है। कभी वस्तुओं में मन अटका है, कभी व्यक्तियों में मन अटका है। तो हमें इन दोनों को अलग कर ईश्वर में मन लगाना है, उनसे प्रेम करना है। वे अपने हैं या वास्तविक वे ही एकमेव ऐसे है कि जिसको चाह सकते हैं, और चाहने वाली कोई बात नहीं, और चाहने वाली ना कोई वस्तु है ना, और जिसको मैं चाहूं ऐसी कोई व्यक्ति है, ये मन में पक्का आना चाहिए। और जब हमारे मन से वस्तु का चिंतन और व्यक्ति का चिंतन समाप्त हो जाएगा, तब अपने आप हमारा जो वस्तु भी नहीं है और व्यक्ति भी नहीं है, जगत वस्तु माने जागतिक वस्तु नहीं है। और ठाकुर तो बार बार बोलते शरीर को लेकर भी, अरे खोलटा खोलटा खोलटा, अपने खुद के शरीर को ठाकुर खोलटा बोल रहे, माने आवरण है, गिलाफ है एक, वो भी किसकी तरफ लक्ष्य कर रहे हमारा, उनके भीतर जो वस्तु है। श्री राम कृष्ण रूप में जो एक वास्तविक शक्ति आई थी, जो वो कैसी है, वही तो सत चित आनंद, वही तो शक्ति आई थी, जो सत है, जो चित है, जो आनंद स्वरूप है। लेकिन उसने वो सत चित और आनंद, इस वस्तु ने, इस भाव ने अपने आप को एक श्री राम कृष्ण रूप देके हमारे सामने लाया। अगर वो बिना रूप के आता तो हम कुछ भी धारण नहीं कर सकते थे, इसलिए वो हमारे जैसे मनुष्य बनते हैं। शंकराचार्य इसलिए गीता के कमेंट्री में कहते हैं कि वो इव लक्षते, कहते हैं वो कि वो मनुष्य जैसे दिखते हैं, मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है। ठाकुर क्या, मां क्या, मनुष्य नहीं है। इसलिए हम जब मां कहेंगे तो केवल शारदा जयराम वाटी में जिनका जन्म हुआ श्यामा सुंदरी के गर्भ से, वो नहीं। जब मां कहेंगे तो मां माने अरे बाबा, वो साक्षात परमा शक्ति सबके भीतर जो चाहिए, जो सब कुछ बनी है सबके रूप में जो व्यक्त हो रही है वो शक्ति। इस प्रकार की विवेक तक हमें पहुंचना पड़ेगा तब हमें, और ऐसी मां को हमें प्यार करना है, ऐसी मां को प्यार करना है, वो मां हमारा जीवन बदल डालेगी। ठाकुर से प्यार करो, मां से प्यार करो, स्वामी जी से प्यार करो, तीनों एक है। दूसरी बात, इसके लिए ठाकुर कहते हैं साधु संघ की सर्वदा आवश्यकता है। साधु ईश्वर से बातचीत करा देते हैं, जिनके जीवन में ईश्वर से संपर्क आ गया है, सबको ऐसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी जो ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर को लेके जीते हैं, ऐसा इनका संपर्क, ये भी हमें आगे बढ़ाता है और ईश्वर के मार्ग में हमें बहुत कुछ दे सकता है। इसके साथ उसी को लक्ष्य करके ठाकुर कह रहे हैं साधु संघ बहुत आवश्यक है। और फिर ठाकुर ये सबके बाद वही मुख्य वस्तु, जिसे विवेक प्राप्त हो गया है वह जानता है कि ईश्वर ही वस्तु है और शेष सब अवस्तु। पुनः सत्संग का और ये सब का सार ठाकुर ने विवेक लेके आए, वही तो है बुद्धि में जो है, ये मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ कही गई है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में विवेक होता है, मन में भाव होता है, उसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। लेकिन भाव के साथ साथ वो विवेक बुद्धि भी जागृत रहनी रखनी है। पहले हमें भाव में खूब बढ़ना है, हृदय को खूब विस्तारित करना है। स्वामी जी ने कहा है ना कि विस्तार ही जीवन है, संकोच ही मृत्यु। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत छोटे होके जी रहे हैं, सत्संग से हम धीरे धीरे विशाल हो जाते हैं। एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। तो हमें ये सत्संग कम से कम एक एक्सपांशन में ले जाए, हमारा जीवन विस्तारित करे, हमें लगे कि हम केवल अपने लिए नहीं जीना है, औरों के लिए भी जीना है। इस प्रकार का विस्तार पहले जीवन में लाना है, और जैसे जैसे विस्तार जीवन में आने लगता है, अपने आप धीरे धीरे विवेक भी काम करने लगता है। मन की जो उपलब्धियां जीवन में आ गई, कि उसके बाद बुद्धि की जो विशेषता है विवेक, वो सही विवेक जीवन में आना शुरू होता है। और एक बार उस विवेक में हम बैठ गए, मिथ्या सत्य मिथ्या, तो हम उदासीन हो जाते हैं। उदासीन, जगत से हम उदासीन हो जाएंगे, जगत में मन नहीं लगेगा, सब कुछ है लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे भगवान बुद्ध का, तथागत का हो गया था, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ था, सब कुछ है लेकिन करना पड़ता है, यहां है तो है सब, लेकिन उसमें मन नहीं है, मन नहीं है, किसी भी चीज में मन नहीं है, मन में उसका स्थान नहीं है, व्यवहार के लिए कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार से क्या हमारे मन में आ रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। और इसी भाव को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वही विवेक जुड़ करके हमें एकांत में बैठने के लिए ठाकुर ने जो चौथी बात कही है कि एकांत में चिंतन, फिर ऐसा है तो सत्य को लेकर उसी में रहने का अभ्यास। कुछ नहीं चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लगता, यहां तक पहुंचना है। और एकांत, ये सत्संग में ये चारों बातें आती है, सब बातें आती है, और उसका तात्पर्य भी यही है कि हमें वो श्रेष्ठ विवेक जीवन में आकर हमें इस जीवन के परे, ये मनुष्य का जीवन माने एक बंधन का जीवन, उस बंधन से मुक्त करने वाला जो सत्संग है वो ये कहानी, इसको लेके बहुत कहानियां है, कहानियां बताते बताने के लिए जाए तो वो कहानियां ही फिर समय खा लेती है पूरा, और जो वास्तविक बात है उससे हमें जो सीखना है वो हम भूल जाते हैं बहुत बार, बहुत बार भूल जाते हैं। क्या होता है ना, कहानी की वो बात हमारे ध्यान में रह जाती है लेकिन उससे वास्तविक हमें क्या ग्रहण करना है इस पर नजर नहीं जाती। तो हमारी नजर जिससे उस पर जाए, ये हमें इस शास्त्र से और सत्संग में, सत्संग से सीखना है। बस ठाकुर माँ को यही प्रार्थना करता हूं कि ये सब अच्छे उद्देश्य से हमारे जीवन में परिवर्तन आए, इसलिए महाराज सब ये कर रहे हैं। होता भी है, हर साल होता है, साल में दो बार होता है, और हम भी जो कुछ करते हैं वो उसी उद्देश्य से, तो वो उद्देश्य सफल होए, हम उधर उसी ओर जाए, ये शक्ति हमें प्राप्त हो। जैसे कहा कि हमारा ये जो पाचन शक्ति है वो पाचन शक्ति अच्छी हो जाए, हम अच्छे एसिमिलेट करें ये सब बातें और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए, यही ठाकुर से प्रार्थना करता हूं। आपने सबने शांतिपूर्वक सुन लिया, तीन दिन से मैं यहां वक्तृता दे रहा हूं, महाराज ने मुझे अवसर दिया, महाराज को भी मैं प्रणाम पूर्वक धन्यवाद देता हूं, आपने सुन लिया, आपको भी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।